गायत्री मंत्र पर ये है एक संक्षिप्त जानकारी। आप जानते हैं, हम सब गायत्री मंत्र को एक प्रार्थना की तरह देखते हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये सिर्फ एक प्रार्थना ना हो, बल्कि एक गुरु का दिया हुआ एक तरह का एक्शन प्लान हो? चलिए आज इसी नज़र से इसके तीन अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। तो पहला पहलू, इसे आप एक परिचय की तरह देख सकते हैं, एक तरह का स्टेटमेंट। मतलब जैसे वो सर्वशक्तिमान सत्ता खुद बता रही हो कि मैं कौन हूँ। वो कह रही है, मैं हर जगह हूँ, मैं तेजस्वी हूँ, मैं पाप नाशक हूँ, और हाँ, मैं ही तुम्हारी बुद्धि को सही रास्ता दिखाती हूँ। अच्छा, तो ये तो हो गया परिचय। अब आता है दूसरा पहलू, और यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है। अब ये सिर्फ बताना नहीं है, बल्कि करके दिखाना है। ये मंत्र एक मिसाल बन जाता है। मतलब वो दैवीय शक्ति सिर्फ अपने गुण गिना नहीं रही, बल्कि उन गुणों को जीकर एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट कर रही है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी पहलू, जो इसे एक कदम और आगे ले जाता है। अब ये ना तो परिचय है, न ही सिर्फ मिसाल, अब ये बन जाता है एक सीधा निर्देश, एक कमांड। तुम्हें भी मेरे जैसा पाप नाशक और दिव्य गुणों वाला जीवन जीना है। और जो मंत्र की आखिरी लाइन है ना, वो एक पावरफुल ऐलान बन जाती है, हम सबकी बुद्धि को सही रास्ते पर लाते हैं। ये एक एक्टिव काम है, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन। संक्षिप्त में, इस दृष्टिकोण से गायत्री मंत्र सिर्फ प्रार्थना नहीं, बल्कि एक परिचय, एक उदाहरण और एक सीधा निर्देश भी है।
नमस्ते। आपको पता है, मैं हमेशा से गायत्री मंत्र को बस एक प्रार्थना ही समझती आई हूँ। मतलब जैसे हम कुछ मांगते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है ना, उसने मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया है। ये स्रोत इस मंत्र को एक पूरे संवाद की तरह देखता है, एक बातचीत जिसके तीन हिस्से हैं। पहला, जब गुरु या दिव्यता ज्ञान देती है। दूसरा, जब शिष्य प्रार्थना करता है। और तीसरा, जब वो उसे स्वीकार करता है। आज की चर्चा का मिशन सिर्फ उस पहले हिस्से को समझना है। ये देना आखिर है क्या? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
हाँ, और ये नजरिया सच कहूं तो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये मंत्र को सिर्फ एक तरफा निवेदन नहीं रहने देता, ये दो तरफा एक एम्पावरमेंट की प्रक्रिया बन जाता है। यहाँ देने का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है, यहाँ दिव्यता अपनी प्रकृति भी बता रही है और शिष्य में जो क्षमता है उसे भी उजागर कर रही है। इसमें एक वाक्यांश बार बार आता है, आप हमारे जैसा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
अच्छा,
ये गुरु और शिष्य के बीच की दूरी को मिटा देता है, एक साझा स्वभाव दिखाता है।
ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत में देने वाले हिस्से की भी तीन अलग अलग व्याख्याएं हैं। पहली 1.A में दिव्यता अपने गुण बताती है कि वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण स्वरूप है, तेजस्वी है, पाप नाशक है और सबकी बुद्धि को सही रास्ते पर लाती है।
बिल्कुल। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक वर्णन नहीं है, ये एक मानक, एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है।
ये एक घोषणा है कि दिव्यता असल में है क्या।
और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जो दूसरी व्याख्या 1B है, उसमें आखिरी पंक्ति बदल जाती है।
हाँ, वो हो जाती है, आप हमारे जैसा उदाहरण बनकर प्रेरक जीवन जियो।
सही। और ये बदलाव बहुत गहरा है, ये एक विवरण से एक सीधी अपेक्षा में बदल जाता है,
एक कॉल टू एक्शन जैसा।
बिल्कुल। ज्ञान एक जिम्मेदारी के साथ आ रहा है कि एक अनुकरणीय, एक इंस्पायरिंग जीवन जीना है। मतलब ये सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को जीने के बारे में है।
और फिर तीसरी व्याख्या सी में एक और छोटा सा बदलाव है। बीच का हिस्सा एक सीधा आदेश बन जाता है, आप हमारे जैसा पापनाशक देव स्वरूप जीवन धारण करो।
हाँ, ये आदेश है।
और आखिर में दिव्यता अपने काम की पुष्टि करती है, हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करते हैं।
और ये एक तरह से पूरी तस्वीर को जोड़ देते हैं।
कैसे?
देखिए, सत्ता पहले अपनी परिभाषा देती है ना, वो पहले भाग में था। फिर दूसरे भाग में वो शिष्य से उस सच को जीने की उम्मीद करती है।
और फिर तीसरे में आदेश देती है।
हाँ, आदेश देती है कि उन गुणों को अपनाओ, और साथ ही ये वादा भी करती है कि मैं हमेशा मार्गदर्शन के लिए हूँ। यह दैवी निर्देश का एक पूरा पैकेज है।
तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, इसका कुल मतलब क्या निकलता है? ये तो साफ है कि गायत्री मंत्र का ये पहला चरण शिक्षक से छात्र को सशक्त बनाने का एक बहुत शक्तिशाली काम है।
बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ श्लोक सुनाना नहीं है, ये पहचान का हस्तांतरण है,
उसे वो शक्ति देना जो उसमें पहले से है।
सही। वही बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर ये संवाद का देने वाला हिस्सा इतना गहरा और परिवर्तनकारी है, तो फिर इसे सही मायने में प्राप्त करने का क्या मतलब है? जब शिष्य प्रार्थना करना शुरू करता है और आखिर में इस ज्ञान को अपनी हकीकत मान लेता है, तो उसका नजरिया कैसे बदलता होगा? नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम गायत्री मंत्र पर बात करने वाले हैं, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसे आपने पहले कभी सोचा होगा। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इस मंत्र को किसी भक्त की प्रार्थना की तरह नहीं देखता।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि एक गुरु और शिष्य के बीच होने वाले दीक्षा संस्कार की तरह देखता है।
हाँ, एक संवाद की तरह।
एक संवाद जिसके तीन हिस्से हैं, गुरु का ज्ञान देना, फिर शिष्य का प्रार्थना करना और फिर उस ज्ञान को स्वीकार करना। और आज की चर्चा में हम सिर्फ पहले हिस्से पर ध्यान देंगे।
देना।
हाँ, देना मतलब जब कोई गुरु, कोई दिव्य सत्ता या जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है सविता देवता इस ज्ञान को शिष्य को प्रदान कर रहा है, तो उस क्षण में इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? ये अपने आप में एक बहुत अलग नजरिया है ना?
हाँ, और ये नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। आमतौर पर हम मंत्र को एक तरफा अनुरोध मानते हैं
कि भक्त ईश्वर से कुछ मांग रहा है।
बिल्कुल, लेकिन ये ढांचा इसे एक गतिशील, एक दो तरफा संवाद बना देता है। और इस संवाद की जो नींव है वो देने वाले हिस्से में ही रखी जाती है। ये समझना कि असल में दिया क्या जा रहा है, वो इस पूरी प्रक्रिया को समझने की पहली सीढ़ी है।
सही बात है। तो चलिए इस संवाद की परतें खोलते हैं। पूरा मंत्र है, ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्रोत के मुताबिक सिर्फ इस देने वाले दृष्टिकोण से ही इस एक मंत्र के
तीन अलग अलग मतलब निकलते हैं।
हाँ, तीन अलग अलग गहरे मतलब। ये कहानी की तरह है जो तीन स्तरों पर खुलती है। तो कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं जिसे हम 1A कह सकते हैं। यहां गुरु या वो दिव्य सत्ता शिष्य से कुछ कह रही है। पहली पंक्ति है, ओम भूर भुवः स्वः। श्रोत कहता है, इसका मतलब है हम स्थूल, सूक्ष्म और कारण स्वरूप सर्वव्यापी, न्यायकारी, सर्वशक्तिमान सत्ता हैं। ये तो एक परिचय जैसा लग रहा है।
यह एक बहुत ही शक्तिशाली परिचय है। यहाँ ये जो शब्द हैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये बहुत मायने रखते हैं।
अच्छा।
हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई कहे कि मैं इस कंप्यूटर का हार्डवेयर भी हूँ, इसका सॉफ्टवेयर भी हूँ और इसे चलाने वाली बिजली भी हूँ। यह अस्तित्व के हर स्तर पर, हर आयाम पर अपना अधिकार जताने जैसा है।
मतलब एक तरह से गुरु कह रहा है, बात शुरू करने से पहले ये समझ लो कि मैं कौन हूँ।
बिल्कुल, ये संवाद के लिए एक मंच तैयार कर रहा है।
ठीक है, ये तो हुई गुरु की पहचान। लेकिन अगली ही पंक्ति में कुछ बहुत दिलचस्प होता है, तत्सवितुर्वरण्यम, जिसका अर्थ स्रोत बताता है आप हमारे जैसा तेजस्विता को वर्ण किए हुए हो। एक मिनट, यहाँ गुरु हमसे सीधे आप पर आ गया।
हाँ,
ये थोड़ा अटपटा नहीं है? अपनी बात करते करते अचानक शिष्य पर ध्यान केंद्रित करना, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है?
यही तो संवाद का सबसे दिलचस्प मोड़ है। यह सिर्फ तारीफ नहीं है।
तो क्या है ये?
यह पहचान का हस्तांतरण है। गुरु ये नहीं कह रहा कि देखो मैं कितना महान हूँ, वो कह रहा है मैं जो हूँ उसे देखो और फिर ये जानो कि तुम भी वही हो। वरण किए हुए हो का मतलब है तुमने इसे चुना हुआ है या तुमने इसे धारण किया हुआ है।
मतलब ये कोई भविष्य की संभावना नहीं है?
नहीं, ये एक वर्तमान की सच्चाई बताई जा रही है।
वाह।
ये एक तरह का क्या कहते हैं, आध्यात्मिक डीएनए ट्रांसफर है।
वाओ, आध्यात्मिक डीएनए ट्रांसफर। मतलब गुरु शिष्य को सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा बल्कि उसे उसकी असली पहचान का आईना दिखा रहा है।
बिल्कुल, और ये आईना दिखाना अगली पंक्ति में भी जारी रहता है, भर्गो देवस्य धीमहि। श्रोत के अनुसार इसका मतलब है आप हमारे जैसा पापानाशक देव स्वरूप गुणों को धारण किए हुए हो।
फिर से वही बात
पापानाशक और देव स्वरूप, ये कोई छोटी मोटी उपाधियां नहीं है। गुरु कह रहा है तुम्हारे अंदर बुराई को खत्म करने की और देवताओं जैसे दिव्य गुण धारण करने की क्षमता पहले से ही मौजूद है।
तो पहले अपनी पहचान बताई, फिर शिष्य को बताया कि तुम्हारी पहचान भी वही है, तुम्हारे गुण भी वही हैं। और फिर आती है आखिरी पंक्ति, धियो यो नः प्रचोदयात्। इस पहले दृष्टिकोण में इसका क्या मतलब है?
यहाँ पर कहानी पूरी होती है। इसका अर्थ है आप हमारे जैसा सभी की सद्बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करने वाले हो।
सभी की, यहाँ नः का अर्थ सभी की है।
हाँ, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत गुणों की बात नहीं है, ये उन गुणों का असर क्या होगा उसकी घोषणा है। गुरु एक पूरी रूपरेखा तैयार कर रहा है, मैं ये हूँ, तुम भी यही हो, और इसलिए तुम्हारा काम ये है।
ये एक जिम्मेदारी सौंपने जैसा है।
बिल्कुल, जो उस दी गई पहचान से अपने आप निकलती है। तो ये पहला स्तर एक पूरा पैकेज है, पहचान, गुण और भूमिका।
ठीक है, ये तो हुआ पहला स्तर। गुरु ने शिष्य को एक आईना दिखा दिया और कहा, देखो तुम ये हो। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन क्या सिर्फ अपनी पहचान जान लेना ही काफी है? या उस पहचान का कुछ करना भी होता है। स्रोत के मुताबिक दीक्षा की कहानी में असली मोड़ अब आता है।
हाँ, और ये मोड़ होने से करने की तरफ है।
होने से करने की तरफ।
पहला स्तर था तुम क्या हो,
जी,
एक स्टेट ऑफ बीइंग। अब दूसरा स्तर, जिसे 1B कहा गया है, वो इस सवाल का जवाब देता है कि तुम्हें क्या करना है।
अच्छा।
एक स्टेट ऑफ डूइंग।
अच्छा,
ये ज्ञान को व्यवहार में लाने की बात है।
तो दूसरे दृष्टिकोण में क्या बदलता है?
स्रोत कहता है कि पहली तीन पंक्तियां बिल्कुल वैसी ही है।
हाँ, नींव वही है
जी,
गुरु का परिचय।
हाँ,
और शिष्य की पहचान का हस्तांतरण, सब कुछ वैसा का वैसा ही है।
और ये जरूरी भी है, इसका मतलब है कि अगला कदम इसी नींव पर बनाया गया है।
जी।
आप किसी को कुछ करने को तभी कह सकते हैं जब उसे अपनी क्षमता का एहसास हो।
सही बात है। तो बदलाव आता है सिर्फ और सिर्फ आखिरी पंक्ति में। दियो योना प्रशोदयात का अर्थ अब बदल जाता है। अब इसका मतलब है, आप हमारे जैसा उदाहरण बनकर प्रेरक जीवन जियो।
ये बहुत बड़ा बदलाव है।
हाँ,
प्रेरित करने वाले हो और प्रेरक जीवन जियो में जमीन आसमान का फर्क है।
कैसे?
पहला एक गुण है, एक संभावना है, दूसरा एक सीधा साधा निर्देश है, एक आज्ञा है।
ये सिद्धांत से व्यवहार में उतरने का सीधा आवाहन है।
हाँ, और इसमें एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उदाहरण बनकर।
बिल्कुल,
ये सिर्फ उपदेश देने की बात नहीं है, ये उस ज्ञान को जीने की बात है, ताकि आपका जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए।
निश्चित रूप से,
ये शिष्य को एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता से एक सक्रिय भागीदार बना देता है। ज्ञान सिर्फ सहेज कर रखने के लिए नहीं है, उसे जीना है, उसे प्रदर्शित करना है,
ताकि दूसरे भी प्रेरित हो सकें।
हाँ, ये जिम्मेदारी को और भी निजी और व्यवहारिक बना देता है। पहले स्तर में कहा तुम्हारे पास ये शक्ति है, दूसरे स्तर में कहा जा रहा है अब इस शक्ति का इस्तेमाल करो और इस तरह से करो।
तो दीक्षा की प्रक्रिया में ये एक तार्किक अगला कदम लगता है। पहले आपको बताया गया कि आप कौन हैं, और अब आपको बताया जा रहा है कि आपको उस पहचान के साथ क्या करना है। ये ज्ञान से क्रिया की ओर एक यात्रा है।
बिल्कुल, ये शिष्य को बताता है कि तुम्हारी दिव्यता तुम्हारी कोई निजी संपत्ति नहीं है।
अच्छा,
ये दुनिया के लिए एक मशाल है और तुम्हें उस मशाल को जलाकर रखना है।
ठीक है, तो हमने देखा पहचान की स्थापना 1A और फिर उस पहचान को जीने का निर्देश 1B। मुझे लगा था कि कहानी यहाँ पूरी हो जाती है, लेकिन स्रोत कहता है कि एक तीसरा और भी गहरा स्तर 1C है।
हाँ,
जहाँ संवाद के नियम ही बदल जाते हैं।
हाँ, और ये तीसरा स्तर इस पूरी प्रक्रिया को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। यहाँ सिर्फ आखिरी पंक्ति नहीं बदलती, बल्कि आखिरी दो पंक्तियों में एक बहुत ही गहरा बदलाव आता है।
स्रोत के अनुसार पहली दो पंक्तियां यहाँ भी वही हैं, गुरु का परिचय और शिष्य की तेजस्विता का वर्णन। लेकिन तीसरी पंक्ति भर्गो देवस्य धीमहि अब बदल जाती है।
हाँ,
अब इसका अर्थ है आप हमारे जैसा पापनाशक देव स्वरूप जीवन धारण करो।
यहाँ भाषा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है।
ध्यान दीजिए।
हाँ, पहले था गुणों को धारण किए हुए हो, जो एक अवस्था थी। दूसरे में था जीवन जियो, जो एक क्रिया थी। अब है जीवन धारण करो।
धारण करो,
ये सिर्फ जीने की बात नहीं है, ये उस दिव्यता को अपनी पहचान, अपना स्वभाव, अपना पूरा अस्तित्व बना लेने की बात है।
ये पूर्ण विसर्जन की मांग कर रहा है, होने से जीने और अब बन जाने तक की यात्रा। और इसके बाद जो होता है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। आखिरी पंक्ति धियोयो नह प्रचोदयात का अर्थ अब है हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करते हैं।
यहीं पर सब कुछ बदल जाता है।
कैसे?
सबसे बड़ा बदलाव है सर्वनाम का, आपसे सीधा हम पर।
ओहो,
सोचिए, पहले दो दृष्टिकोणों में आखिरी पंक्ति शिष्य आपको संबोधित थी, अब यह गुरु या सत्ता की अपनी घोषणा है हम।
तो ये संवाद कैसा हुआ? मतलब गुरु शिष्य से बात कर रहा था और अचानक वो अपने बारे में बात करने लगा, इसका क्या मतलब निकाला जाए?
यही तो इस संवाद की खूबसूरती और गहराई है। ये शिष्य के एक संभावित सवाल का जवाब है। कल्पना कीजिए, गुरु शिष्य से कहता है तुम देव स्वरूप जीवन धारण करो। शिष्य मन में सोच सकता है, मैं ऐसा क्यों करूं? ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं क्यों उठाऊं? और इससे पहले कि शिष्य पूछे, गुरु जवाब देता है, क्योंकि यही हमारा काम है, यही हमारा स्वभाव है, हम सबकी बुद्धि को प्रेरित करते हैं।
अच्छा, तो ये उस निर्देश को एक संदर्भ दे रहा है, एक वजह दे रहा है।
हाँ,
ये सिर्फ एक मनमाना आदेश नहीं है, बल्कि ये उस सत्ता के मूल स्वभाव का हिस्सा है जिसमें शिष्य को शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है।
बिल्कुल, ये शिष्य के व्यक्तिगत काम को एक ब्रह्मांडी उद्देश्य के साथ जोड़ देता है। गुरु कह रहा है, जब तुम एक प्रेरक जीवन जीते हो तो तुम अकेले काम नहीं कर रहे होते, तुम उस सार्वभौमिक शक्ति का एक माध्यम बन जाते हो जो हमेशा से सभी को प्रेरित करती आ रही है।
वाह,
ये दीक्षा का अंतिम चरण है जहां शिष्य का मैं गुरु के हम में विलीन हो जाता है।
वो सिर्फ निर्देश का पालन नहीं कर रहा,
बल्कि वो उस शक्ति के स्वभाव का एक हिस्सा बन रहा है।
तो अगर हम इन तीनों स्तरों को एक साथ देखें तो ये एक पूरी यात्रा की तरह लगता है।
बिल्कुल,
एक ही मंत्र, एक ही संदर्भ देना, लेकिन तीन अलग अलग अर्थ जो एक दूसरे पर टिके हैं।
हाँ, ये दिखाता है कि ज्ञान का हस्तांतरण कोई एक बार में होने वाली घटना नहीं है, ये एक गतिशील प्रक्रिया है जो शिष्य की समझ और तैयारी के साथ विकसित होती है। ये एक सीढ़ी की तरह है।
सीढ़ी की तरह।
पहला कदम एक
पहचान स्थापित करता है, तुम मेरे जैसे हो, ये नींव है जो शिष्य को उसकी असली क्षमता का बोध कराता है।
दूसरा कदम एक बी उस पहचान को जीने का निर्देश देता है, एक उदाहरण बनो, ये उस क्षमता को व्यवहार में लाने का आह्वान है, ये ज्ञान को क्रिया में बदलने पर जोर देता है।
और तीसरा कदम एक सी उस क्रिया को एक सार्वभौमिक उद्देश्य से जोड़ता है, इसे धारण करो क्योंकि यही हमारा स्वभाव है, ये व्यक्तिगत प्रयास को एक बड़े ब्रह्मांडीय प्रवाह से जोड़ता है।
पहचान, क्रिया और उद्देश्य, हाँ, ये तीनों मिलकर इस देने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं।
ये सिर्फ एक मंत्र देना नहीं है, ये तो एक पूरी जीवन पद्धति और एक विश्व दृष्टि को स्थापित करने जैसा है। और ये याद रखना जरूरी है कि ये तो कहानी का सिर्फ एक तिहाई हिस्सा है।
सही बात है,
ये तो सिर्फ गुरु के देने का दृष्टिकोण है। स्रोत में तो प्रार्थना और स्वीकार करने के दृष्टिकोण भी हैं।
हाँ,
जिनके अपने अलग और शायद उतने ही गहरे अर्थ होंगे।
हाँ, और ये हमें दिखाता है कि अर्थ कितना स्तरित हो सकता है, एक ही वाक्य को कौन कह रहा है, किससे कह रहा है और किस इरादे से कह रहा है, इससे उसका पूरा मतलब बदल जाता है।
बिल्कुल,
यहाँ गुरु का इरादा शिष्य का उत्थान करना है और ये इन तीन चरणों में साफ दिखाई देता है।
आज की चर्चा से ये तो साफ है कि एक ही मंत्र के शब्दों में कितनी गहराई और कितना लचीलापन हो सकता है। सिर्फ देना के नजरिए से ही गायत्री मंत्र एक घोषणा, एक व्यक्तिगत निर्देश और एक सार्वभौमिक सत्य के रूप में सामने आता है। ये ज्ञान की कोई स्थिर बेजान इकाई नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस लेता हुआ संवाद है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि अर्थ संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ कैसे बदलता है। शब्द वही रहते हैं, लेकिन उनके पीछे की ऊर्जा, इरादा और संबंध, वो सब बदल जाता है। ये भाषा और चेतना के बीच के गहरे रिश्ते को उजागर करता है।
और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज हमने केवल गुरु या इष्ट के देने के दृष्टिकोण को समझा, लेकिन अगर इस संवाद के एक पक्ष से अर्थ इतना बहुस्तरीय और परिवर्तनशील है, तो दूसरे पक्ष यानी शिष्य के दृष्टिकोण से इन्हीं शब्दों का अर्थ कैसे बदलता होगा? जब शिष्य इन्हीं शब्दों का प्रयोग प्रार्थना करने के लिए करता है, या जब वह इस दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में स्वीकार करता है, तो उस प्रक्रिया में शिष्य की भूमिका क्या होती होगी और मंत्र का स्वरूप कैसे रूपांतरित होता होगा?